मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत आज मैं उस चौथे पिलर्स की तैयारी के बारे में आप सबसे बातें करने जा रहा हूं, जिसे हम अब भूगोल कहेंगे, क्योंकि तीन के बारे में हम बात कर चुके हैं और भूगोल विषय ही बचा हुआ है। जैसा कि मैं अभी आप सबसे बताता आ रहा हूं कि फिलहाल मैं करंट अफेयर्स को टच नहीं कर रहा हूं और आपके प्री एग्जामिनेशन पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि हम प्रायोरिटी के आधार पर चीजों को देखें और लें। तो मैं बस फिलहाल यही कर रहा हूं। आज मैं भूगोल की बात करूंगा। आपको ध्यान होगा कि हिस्ट्री के साथ साथ भूगोल को भी बेवफा कहा गया है। हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में पढ़े सवेरे सफा। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी ये लाइनें लिखी होंगी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से उसकी दुश्मनी होगी, या फिर ये है कि उसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाने वाले बहुत अच्छे शिक्षक नहीं मिले होंगे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भूगोल तो मुझे लगता है कि शायद सबसे मजेदार विषयों में है। हाँ, मैं मजेदार कह रहा हूं, सरल नहीं कह रहा हूं, मजेदार। मजेदार का मतलब क्या हुआ? मजेदार का मतलब यह हुआ गन्ने की तरह। गन्ने की तरह का क्या मतलब हुआ? देखिए, जब आप गन्ना चूसते हैं, मैं गन्ने का रस पीने की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे बने बनाए नोट्स, उन्हें मैं गन्ने का रस कहता हूं, जिनमें कोई रस ही नहीं रह गया है, केवल स्वाद रह गया है, मैं गन्ने की बात कर रहा हूं। आप खेत पर जाते हैं, गन्ने को तोड़ते हैं, उसकी चरमराहट की आवाज को सुनते हैं। जब आप खेत में घुसते हैं, गन्ने के खेत में, तो उसकी जो लंबी लंबी पत्तियां हैं वो आपके शरीर से लिपटती हैं, उन पत्तियों को आप हटाते हैं, उनकी सरसराहट की आवाज आती है, फिर गन्ना तोड़ करके और फिर आप उसे छीलते हैं। छीलने में तकलीफ होती है, हार्ड होता है, मन करता है कि यार कोई और छील दे तो क्या बात है, लेकिन दूसरा कौन छील देगा, क्योंकि दूसरे के छीलने से कहीं ना कहीं गन्ना जूठा भी हो जाता है, तो वो भी जरा अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपको छील कर खाना है तो खुद ही छीलना पड़ेगा, अपने मुंह से छीलना पड़ेगा। ये बात अलग है कि आज बाजार में चले जाइए तो आपको गन्ने के छीले हुए टुकड़े मिल जाते हैं। मैं भी खाता हूं उन्हीं को, अब दांतों में इतनी ताकत नहीं रह गई है कि मैं खुद छील सकूं, लेकिन काश कि अभी भी मैं वैसा कर पाता, पहले खूब किया है। जब एक बार आप गन्ने को छील लेते हैं, तब फिर जब आप उसे खाते हैं, मुंह से तोड़ तोड़ कर खाते हैं, तो उसका स्वाद ही अद्भुत होता है, क्योंकि उसमें श्रम का स्वाद मिल चुका होता है। दोस्तों, गजब का स्वाद होता है उसमें। गन्ने के रस को तो आप गट 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 पी लेते हैं। एक ग्लास गन्ने के रस को पीने में मुश्किल से आपको आधा मिनट या एक मिनट ही लगता है, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन एक गिलास रस के लिए जितने गन्नों को चूसने की जरूरत पड़ेगी उसमें वक्त लगेगा, और आनंद का जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ जाएगा। भूगोल इसी तरह का विषय है। माफ कीजिएगा कि मैंने थोड़ी सी लंबी बात की, क्योंकि मैं जब इस तरह की बातें करता हूं दोस्तों, तो मेरा पर्पस केवल यही नहीं है कि आप इसी बार के प्री को क्वालिफाई कर सकें, मेरा पर्पस ये भी होता है कि बाय द वे यदि इस बार का पेपर खराब भी हो गया तो कोई बात नहीं, अगला साल तो है, कम से कम अगले साल का आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। इसलिए माफ कीजिएगा कि मैंने इस गन्ने की बात को थोड़ा सा लंबा ही खींच दिया। भूगोल विषय इस मायने में इस गन्ने की तरह है कि एक बार आपको मेहनत तो जरूर लगेगी इस विषय को समझने में, आसान नहीं है। इतिहास को समझना उतना मुश्किल काम नहीं होता है, इकोनॉमिक्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, पॉलिटिकल साइंस को समझना इतिहास की तुलना में जरा कठिन काम होता है, लेकिन भूगोल की तुलना में थोड़ा सा सरल होता है। पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा समझना इसलिए भी सरल होता है क्योंकि हमारे आसपास उस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, अखबारों में भी आप लगातार पढ़ते रहते हैं, तो काफी कुछ हमारे दिमाग में चीजें मौजूद रहती हैं, लेकिन भूगोल के साथ ऐसा नहीं है। हम भूगोल के बीच में रह रहे हैं, भूगोल को हम जी रहे हैं, लेकिन वो भूगोल है क्या और वो सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है हम नहीं जानते। हम गर्मी से परेशान होते हैं, हम वर्षा से परेशान होते हैं, कभी कभी वर्षा नहीं होती तो परेशान होते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, फसलें पैदा हो रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ पैदा हो रहा है, सभी जगह एक ही चीज पैदा नहीं हो रही है, हम इन सब का उपभोग करते हैं। जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इन सब चीजों को देख भी रहे होते हैं, लेकिन इनके बारे में हम जानते कुछ भी नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि चूंकि ऐसा ही होता आया है इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें थोड़ा सा और पीछे जाना होगा कि ऐसा ही होता क्यों आया है, यही भूगोल है। जैसे ही हम प्रकृति के इन सारे रहस्यों को, इन सारे सूत्रों को, रहस्य नहीं कहना चाहिए, रहस्य कहने से थोड़ी घबराहट होने लगती है, जैसे ही हम प्रकृति के इन सारे फार्मूलों को समझ लेते हैं, भूगोल हमारा हो जाता है, भूगोल हमारी समझ में आ जाता है। हाँ, ये जो समझ है ये थोड़ा मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि भूगोल को समझने के लिए कोई समझाने वाला तो चाहिए, जैसे इकोनॉमिक्स को समझने के लिए किसी समझाने वाले की जरूरत पड़ती है। खुद समझ पाना एक मुश्किल काम होता है, और मैं तो यहां तक कि अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी की शुरुआत भूगोल से ही होनी चाहिए। एक बार अगर आपने भूगोल को समझ लिया तो आप मान करके चलिए कि आपके हाथ में मास्टर चाबी आ गई है, जिसको मास्टर की कहते हैं, एक ऐसी चाबी जिससे आप उस होटल के सारे कमरों के ताले खोल सकते हैं। सभी विषयों से भूगोल का सीधे सीधे जुड़ाव होता है। हालांकि मैं ये बात कह रहा हूं तो अभी आपको इस पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन आगे चल करके आप इस पर विश्वास करने लगेंगे, बशर्ते कि आप दूसरे विषयों की भी तैयारी करने के दौर से गुजर रहे हों। दोस्तों, इतनी लंबी बात मैंने क्यों की? इतनी लंबी बात मैंने इसलिए की है क्योंकि भूगोल पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से ज्यादातर प्रश्न इसी तरह के सिद्धांत को व्यवहार में बदलने से जुड़े हुए होते हैं। जैसे याद कीजिए कि मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स के सीधे सीधे सिद्धांत नहीं पूछे जाते। पूछा यह जाता है कि ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में ये क्या होगा, और उसका उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आप इकोनॉमिक्स के उस फार्मूले को उस पर अप्लाई करें। ज्योग्राफी के साथ भी काफी कुछ ऐसा ही है। तथ्यात्मक प्रश्न भी होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनकी संख्या काफी कम होती है। चौथा स्तंभ है तो मान करके चलिए कि 15 क्वेश्चंस इससे भी होते हैं। ज्योग्राफी में करंट से संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप देखें कि ज्योग्राफी में तो घटनाएं घट ही रही हैं। लोकेशन वगैरह से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, स्वाभाविक है कि ज्यादातर वो करंट से होते हैं, कि ये स्थान अगर कोई चर्चा में आ गया तो किस महासागर के पास है, क्या तट पर है, और इस तरह के प्रश्न आते हैं। मैं प्रश्नों पर नहीं जा रहा हूं। अब जबकि मैं ये कह रहा हूं कि सिद्धांतों का व्यवहार रूप में किस तरीके से स्वरूप हमारे सामने मौजूद है, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बेहतर होगा कि मैं इसका एक उदाहरण आपको दूं तो शायद आपके दिमाग में मेरी बात ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी। एक प्रश्न है जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ही पूछा गया है और हाल में ही पूछा गया है, हो सकता है कि पिछले साल न पूछा गया हो, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये पूछा अभी ही 2-1 साल के अंदर ही गया है। ध्यान से सुनिएगा। यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, इसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, इसके विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, इसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? कपास, जूट, गन्ना, चाय। है ना, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न। अब आप देखिए कि ऊपर एक सिचुएशन दे दी, जैसे केस स्टडी जैसा कुछ मामला हो जाता है ना, कि ये सिचुएशन है। अब बात बताइए कि इस सिचुएशन में कौन सी फसल होती है। तो हर फसल के बारे में आप पढ़ते हैं कि इसके लिए कैसे मिट्टी की जरूरत है, किस तरह का धरातल होना चाहिए, यानी कि धरातल का स्वरूप कैसा हो, और इसके बाद फिर वहां वर्षा कितनी होनी चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, इन सब के बारे में आप पढ़ते हैं। उसी को उलट दिया है। तो ये व्यावहारिक रूप से चीजों को जानना चाह रहा है कि ठीक है, किताबों में तो आपने पढ़ा है, किताबों में बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन इनफैक्ट सच बात यह है कि आप उस पढ़े हुए को अप्लाई करने की स्थिति में कितना है। और सच पूछे तो इस तरह की प्रिपरेशन ही अपने आप में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज भी है। तो दोस्तों, अब आप प्रिपरेशन करने की स्थिति में तो है नहीं कि आप कैसा प्रिपरेशन करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो तो अब बाद की बात हो गई है। फिलहाल अब हम आते हैं कि टॉपिक्स आपके कहां कहां से आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण सेक्टर हैं। भूगोल को आप 3 भागों में बांट सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से मैं कह रहा हूं। एक तो है भूगोल के सीधे सीधे सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ज्योग्राफी। क्या होती है थ्योरी ऑफ ज्योग्राफी, उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। इसके बाद उसका जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है भारत का भूगोल, और जो तीसरा सेक्शन होता है वो होता है विश्व का भूगोल। ये तीन मुख्य सेक्शन हैं। इसी के अंदर जो एक अंडर करेंट होता है, जिसे आप कह लीजिए कि अंतर प्रवाह जो होती है, वह है करेंट अफेयर्स। करेंट में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, और ज्योग्राफी में देखिए घटनाएं घटित होती रहती हैं, ठीक उसी तरह से जैसे पॉलिटिकल साइंस में घटनाएं घटित होती हैं। केवल इतिहास ही एक ऐसा विषय है जो करंट से थोड़ा सा अछूता सा रहता है, सा मैं शब्द जोड़ रहा हूं, अदरवाइज तो इन तीन विषयों का बहुत बड़ा संबंध करंट अफेयर से होता है। तो ये जो मैं अंडर करंट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं वो इसके करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड है। पूछा जाएगा करंट अफेयर्स से, लेकिन इस अंदाज में पूछा जाएगा, आपको लगेगा कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, यानी कि उसके सिद्धांत पक्ष से जुड़ा हुआ है, और ऐसा होता भी है। तो बकायदे जो करंट अफेयर्स का हिस्सा है भूगोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं परसेंटेज में डिवाइड करूं तो जो सिद्धांत का पक्ष है, जो सीधे सीधे फैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका जो रोल है मुझे नहीं लगता है कि 30-40% से ज्यादा है, मतलब 30% तक ही सीमित रख देना चाहिए। रिमेनिंग जो लगभग 70% है, 60-70%, उनका जुड़ाव कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से होता है। यह बात आप अपने दिमाग में रखिए। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से अपेक्षाकृत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, वो एक तरीके से इंटरनेशनल अफेयर्स जैसे हो जाते हैं। लेकिन जो इंडियन ज्योग्राफी है उससे फिर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो जो मेन हिस्सा हो जो होगा प्रश्न, भूगोल के सिद्धांत और भारत का भूगोल, ये दो इसके सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं, राइट? तो दोस्तों अब वक्त हो चला है, अब इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके डिटेल्स के बारे में हम लोग कल बातें करेंगे। तो मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हम लोगों की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं फ्रेंड्स, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच होने वाली हैं। इसके लिए सिकंदरपुर उत्तर प्रदेश के रिजवान अहमद हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो रिजवान जी, मैं आपका एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं वेदानंद नई दिल्ली से और अनामिका डे आसनसोल पश्चिम बंगाल से। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।